तो आइए जरा इन्हीं सारी बातों में पारा नंबर 26 पे एक नजर डालते हैं, एक बर्ड आई व्यू। ये सूरत अल अहकाफ से शुरू होती है। अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं, आपको तो अरब में बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। कौम आद का जिक्र है जो रेत के टीलों के पास आबाद थी, इसी वजह से इस सूरत को अहकाफ कहते हैं। इसमें शुरू में तौहीद खुदाबंदी पर दलाइल है, फिर उसके बाद कुरान पाक की हक्कानियत है। अहले किताब कुरान पर ईमान लाएंगे। हकूक वालिदैन का तस्करा है, ख़ास तौर पे वो जिनके माँ बाप उनको इस्लाम पे आने से रोके। फिर शान सिद्दीक के अकबर है, कौम आद को तौहीद की दावत आम है। फिर इसमें जिन्नात का इस्लाम कबूल करना भी आता है। फिर इमामुल अंबिया को सब्र की तलकीन है, फसबिर कमा सब्र उलुल अज़्म मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहु। फिर इसके बाद वो सूरत है इस बारे में जो हमारे इस साल के थीम में है, मोहम्मद। प्यार से दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया कराम के नामों पे जो पीछे चार सूरतें पढ़ी है उसमें पांचवी सूरत है मोहम्मद नाम की। आपका बिल्कुल ये नाम है, बड़ा अनयूजल आगाज है इस सूरत का। देखिए कुफार और मोमिनीन के आमाल के नतीजे क्या निकलने हैं, शुरू से ही पता चल जाएगा। फिर जंगी कैदियों के मुतल्लिक अहकामात, फाइजा लकी तुमल्लज़ीन कफरो। फिर अहले जन्नत के लिए इनामात, और ये सूरत है जिसमें जन्नत की चार नहरों का तस्करा आएगा। ये छोटा सा जुमला मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपकी मेमोरी में रह जाए और फिर आपका इंसाइक्लोपीडिया भर जाए कुरान के बारे में। फिर मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान फ़र्क, ईमान वाले कुरान की महफिल में खुश हो रहे होते थे और मुनाफिक बेचैन हो रहे होते थे। जब कोई जिक्र आता किताल का तो मुनाफिकीन भीगी बिल्लियां बन जाते और ईमान वाले खुशियां मनाते। फिर इसी तरह आगे कुफार के लिए वईद है, और अल्लाह ताला बेनियाज है, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। और अगर तुम मुंह फेरते हो, छोड़ते हो, अपनी ड्यूटी छोड़ते हो, रिजाइन करते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो इधर उधर, ये वो ये तुम्हें नहीं समझ आता है खोंटे से बनना, तो जाइए खुशी से जाइए, जाते जाते फूल भी ले जाइए, कोई तोहफा भी दे देते हैं आपको फेयरवेल का। लेकिन याद रखना यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, आपकी जगह अल्लाह किसी और को ले आए, कोई जगह खाली नहीं रहती। आज साइंस ने बता दिया जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एयर होती है। अल्लाह के नबी ने कहा जो कुर्सियाँ खाली होती हैं वहाँ फरिश्ते होते हैं, अगर यहाँ कोई चेयर खाली दिख रही है तो वहाँ फरिश्ता होगा इंशाल्लाह, हमारा ईमान है। तो अल्लाह बेनियाज है, मेरे पढ़ाने से बेनियाज, आपके पढ़ने से बेनियाज। सारी दुनिया भी छोड़ के एक तरफ हो जाए ना तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह अपनी ज़ात से खुद आला है। उसके बाद सूरह फतह, पहली आयत में फतह का लफ्ज है, इन्ना फतहना लक फतह मुबीना। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ उमरे की नियत से निकले, ख्वाब भी अल्लाह ने दिखा दिया था। तकरीबन 1400 के करीब सहाबा कराम नबी के साथ थे, सन 6 हिजरी था, 6 साल हो गए थे मक्का को देखे हुए। यहाँ 6 दिन गुजर जाए दिल बेचैन होता है, जैसे मैका याद आता है ना, माँ को देख लो तो दिल खुश हो जाता है ना, बहन भाइयों को देख लो तो दिल खिल जाता है ना, उनके बच्चों को देखो तो दिल खुश होता है। मैंने देखा है मक्का और काबा के अंदर ये कशिश है, जो मर्जी और रश है कुछ है, कहते नहीं मक्का में घर छोटा भी हो तो बेटियां उधर जाके खुशी हो जाती हैं। अपने घरों में चाहे मोहल्लात हो, बड़े बड़े दालान हो, लेकिन वहाँ जो भी थोड़ी बहुत जगह हो कहती नहीं मक्का तो मक्का है। 6 साल हो गए थे उनको बेचैन हुए हुए। आप अपने ख्वाब के तहत सहाबा को लेकर निकले, ऐन मक्का के करीब जब पहुंचे तो खबर फैल गई कि मोहम्मद अपने साथ एक लश्कर लेकर आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही तूफानी कश्म का जो मोहम्मद अरबी के उसको जेहन में लाइए, जिससे गुजर कर उनकी हिजरत करके और वहां को छोड़ कर गए थे। दिल में चोर था ना, लगा ये हमारे ऊपर हमला कर दें, हालांकि वो तो अहराम में थे और अहराम में तो आपको पता है कि कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। हुदैबिया के मुकाम पर रोक लिया गया। आपने हजरत उस्मान गनी को भेजा कि घर का बंदा है, कुरैशी भी हैं और आपके दामाद भी थे, कि जाकर निगोसिएशन कीजिए, देखिए उनको बताइए कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, इससे भी पता चलता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बता देना चाहिए। खैर वो वहाँ गए, वहाँ जो खाना था, लेकिन इधर खबर फैल गई कि लोगों ने उस्मान को कत्ल कर दिया रदी अल्लाह अन्हु, झूठी खबर थी जो बाद में पता चला। लेकिन उस वक्त फिर ये जो खबर थी इसने सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक गम और गुस्सा पैदा किया, क्योंकि उस दौर में भी कासित के कत्ल को लोग एलाने जंग कहते थे। फिर वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह के नबी के साथ सहाबा ने बैत ली थी, लकद रदी अल्लाह अनिल्लज़ीना युबायिऊनक तहत शजर। ये तो सूरत हमने इंडिया स्टडी में जो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय की, और हमारे साथ माशाल्लाह उस वक्त हिकमत उन बालिगा चल रहा था कोर्स, लाइव क्लास होती है। आप लोग भी रमजान के बाद ज्वाइन करना चाहें तो उसका आपको हमारी मेन वेबसाइट से लिंक मिलेगा। आजकल जो चल रही है वो है लुलु वल मरजान, वंस अ वीक पूरी लाइव क्लास, एक सूरत की इंडेप्थ स्टडी शुरू की होती है, साथ उसमें हिकमत की बातें और बहुत कुछ होता है, गौर व फिक्र तदब्बर। और उसमें हमने इस सूरत को मेरा ख्याल है कुछ 6-7 महीने क्या इससे भी ज़्यादा लगा के पढ़ा था। एक एक आयत भी एक सेशन में नहीं पूरी होती थी। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वन साइडेड शर्तें मानी, ये लिख लीजिए, जिंदगी में कभी पूरा दबना पड़ता है, दब जो अगले को फील हो तुम हो ही नहीं, जैसे सहराओं में कभी आंधी चलती है ना तो रेत उड़ती है, तो कुछ जानवर अपनी गर्दन रेत में दबा के बैठ जाते हैं, वो बच जाते हैं। जब रेत का तूफान टलता है तो बाहर निकलते हैं तो ठीक होते हैं, लेकिन जो गर्दनें अकड़ी रखते हैं ना रेत के तूफान में, उनकी गर्दनें हवाओं के जरिए कई दफ़ा टूट जाती हैं। हमेशा अपने हालात और वक्त को देख कर काम कीजिए, ये भी सीरत से सीखे हमने। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लम ने वहाँ वो वन साइडेड शर्तें मानी कि जो ना तो सहाबा के जहन में आ रही थी, करीबी सहाबी पहली दफ़ा हुआ कि अल्लाह के नबी को एज अ लीडर क्रिटिसाइज करने लगे। हजरत उमर कहते हैं मैं तो बोल पड़ा, अल्लाह के नबी अब सच्चे नबी नहीं है, अल्लाह ने आपको हक के साथ नहीं भेजा। हाँ हाँ उमर, हाँ क्या तुम्हारे दिल में शक है? नहीं अल्लाह के नबी, तो फिर आप इनकी ऐसी वन साइडेड शर्तें क्यों मान रहे हैं? उमर तुम्हें नहीं पता, सबर सबर, ये फतह अल्लाह के नबी, इसको फतह कहते हैं? सहाबा को कहा एहराम खोल दो, कोई खोलने को तैयार ही नहीं हो रहा। इतना रंज, इतना तरद्दुद, इतना गुस्सा था उनके दिल में कुफारे मक्का पे कि हम तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहे तो तुम हमारे साथ क्यों ऐसे मामले कर रहे हो। और अल्लाह के नबी ने कहा चूंकि एहराम बांधा तब इसको खोल दो, और एहराम खोलने का हुक्म दिया, को अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, टस से मस नहीं हो रहे। अब एक लीडर और इतनी मोहब्बत करने वाला लीडर और इतना ज्यादा चाहने वाला लीडर, उसके लिए ये कितनी तकलीफ दे बात होगी। आप रंजीदा हो गए, दुखी हो गए, गमजदा हो गए, फिर क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आए, हमारी सबकी अम्मी जान, हमारी माँ हिकमत वाली उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस सफ़र में नबी के साथ थी। फिर उन्होंने वो तसल्लियाँ दी जो एक अच्छी बीवी को ऐसे वक्त में अपने शौहर को देनी चाहिए। हम ना करिए, बच्चे हैं हम, जैसे कहते हैं बच्चे हैं, कहा ये दुखी हैं, सैड हैं, ये कबूल नहीं कर पा रहे। आप देखिए मदीना से मक्का आज भी आप आइए, हाँ ज़रा घोड़ों पर ऊँटों पर हफ्तों का सफ़र, क्या अब हम उम्रा किए बगैर चले जाएं? और गुस्सा ये था कि हमने कुछ किया नहीं और हमें क्यों रोक रहे हैं। और आपने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप जाके ना अपना एहराम खोलना शुरू कर दे, फिर देखिए ये क्या करते हैं। अल्लाह के नबी बाहर गए, अपने हुजरे से निकले, सब सहाबा दिख रहे हैं और आप ऊंची जगह पे थे, आपने अपना एहराम खोलना शुरू कर दिया। बस उसके साथ ही जब बाल काटने शुरू किए, सहाबा फिर अपने ऊपर काबू पा ही नहीं सके, क्योंकि इबादत की बेहतरीन सूरत इताअत है। वहां सहाबा ने इताअत भी नहीं की, इत्तबा की। ये भी जुमला लिखिए, इस बारे में आपको इताअत और इत्तबा का फर्क भी दिखेगा। इताअत क्या है कि कोई उस्ताद या बड़ा आपको कुछ कहता है, ये कर दीजिए, आप कर देते हैं और खुशी से कर दे, पानी ला दे, आप खुशी से पानी का ग्लास लेके आके रखते, इताअत हो गई। कुछ कहा तो दिल में गुस्से और रिजेंटमेंट के बगैर वो काम कर दिया। इत्तबा क्या है? कहा भी नहीं, आपको खुद ही फील हो गया कि इनका गला जरा सा खुश्क हो रहा है, आप गए उठकर लाकर पानी का ग्लास रख दिया। ये काम क्या? बिन कहे करना, फुट स्टेप पे फॉलो करना। जहां नबी ने पाँव रखा सहाबा ने वहां अपने सर रख दिए, नबी का पसीना नीचे गिरा सहाबा ने उसको उठाकर शीशियों में भर लिया, उसको खुशबू लगाते थे। आपका जहाँ कदम पड़ा दूसरा कदम साहबा का होता था, कहना नहीं पड़ता था आ जाना ना, चलो क्या करूँ, फिर मैं अकेला क्या करूँ, हमारे पास तो उजर ही इतने हैं। मैं कहती हूँ माजूर के लफ्ज को हैंडी कैप के साथ हमने समझा होगा, आमतौर पे लोग हैंडी कैप्स को माजूर कहते हैं, कभी जरा सोचिएगा हमारे अपने दीन के कामों से रुकने के उजर कब खत्म हो गए। हम भी माजूर हैं, हर वो बंदा माजूर है, हैंडी कैप है, जिसको नेकी का मौका मिल जाए वो थोड़ी सी कुर्बानी करके उसको अपना ले तो सहाबा की तरह वो अमर हो जाए। खबरों में उनके ये सारी नेकियां जा रही हैं जो बाद में लोगों ने उनको देख कर की। बहरहाल ऐसे अंधेरे के वक्त से जब सहाबा के भी दिल टूटे, नबी के भी टूटे, खदी के जानवर कुर्बान किए, वापसी का रुख, यानी जैसे कहते हैं गाड़ी का रुख मोड़ लो, टेक अ यू टर्न, वापस मदीना की तरफ काफिला निचोड़ा, अभी थोड़े कदम गए तो इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना नाजिल। 8 हिजरी में फतेह मक्का का पेश खेमा एक बहुत दबी हुई सुलह बनी। ये है असल में कि मन तबादल लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, हदीस है, जो अल्लाह के लिए आजी इख्तियार करेगा अल्लाह उसको जरूर इज्जत देगा। कभी आपको ऐसा मौका मिले ना, बिस्मिल्लाह पढ़कर आजी इख्तियार कीजिए और फिर झांकिएगा कि उसके बाद अल्लाह आपको इज्जत क्या देता है। जब अल्लाह ने किसी को इज्जत देनी होती है उससे पहले उसको किसी मुश्किल में डाल देता है, पक्की बात है। मक्का कभी फतह ना होता अगर सुलह हुदैबिया ना होती, और सुलह हुदैबिया ना होती तो मक्का वाले अपनी ही की हुई शर्त के 10 साल तक जंग नहीं करेंगे हम किसी से, 2 साल नहीं रह सके और जाकर किसी की हिमायत करके इस्लाम और सहाबा के खिलाफ किसी की मदद कर दी। तो बहरहाल फिर उसके बाद सूरह फतह में असमत खातिमुल अंबिया पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने जो इसमत रखी यानी गुनाहों से बचा लिया, लियग़फ़िरा लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बिका व मा तअख़्खर, फिर बैत रिजवान का तज़किरा आएगा आयत 10 में, फिर मुनाफिकीन के हीले बहाने आएंगे आयत 11 में, और फिर शुरकाए बैत रिजवान से रज़ा का ऐलान, लकद रदी अल्लाह अनिल मोमिनीन इज़ युबायिउनका तहता शजरा, यहाँ से सहाबा किराम को रदी अल्लाह का लक़ब मिला था। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा, कैसे वो काम कराता है, दुश्मनों के हाथों से नबी को बचा लेता है, और फिर इस सूरत में आप देखेंगे सकीनत का लफ्ज़ आएगा, फ़ंज़लल्लाहु सकीनतहु अलर रसूलिही अला रसूलिही वलल मोमिनीन। याद रखिए चारों तरफ आंधियां तूफान चल रहे हो, या तलवार हो, तीर हो, प्रोपेगंडे हो, आपके खिलाफ कोई बातें करे और आपके दिल में सुकून हो, ये सकीनत है। और ख़ास तौर पे जब सुलह हुदैबिया का मुआहिदा लिखा जाने लगा, मुशरिकीन ने जिद और तकबर की वजह से कुछ ऐसी चीज़ों को इशू बना लिया, जिसको आज की जुबान में आप कहे कि नॉन इशू को इशू बनाना, कुछ लोग होते हैं मसला होता कोई नहीं, वो खुद ही मसला होते हैं क्योंकि वो हर वक्त मसले बनाए रखते हैं चीज़ों के। आप खुद मसले अपने आप को ठीक कीजिए, आपके साथ ही क्यों इतने प्रॉब्लम्स हैं। घरों में होते हैं ना कोई बच्चे प्रॉब्लम मेकर, कभी सॉक्स नहीं मिल रहा, कभी उनको जूती नहीं पसंद आ रही, कभी उनको अंडा टूट गया, मुझे नहीं खाना, नया बना के दें, कुछ ट्रबल्स वाले होते हैं, ट्रबल मेकर्स। नहीं, सहाबा को अच्छा नहीं लगा जब कहा गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लफ्ज़ माहदे में लिखा जा रहा है, कहने के ना ना ना, हम रहमान को तो मानते ही नहीं, ये रहीम कौन होता है, हमें तो अल्लाह का लफ्ज़ पता था। अल्लाह के नबी ने कहा था कोई बात, नो वरीज, बिस्मिकल्लाहुम्मा लिख दो। कभी सीरत पढ़ के नबी के किरदार को पढ़ के ज़िंदगी गुजारे, आपका दिल करेगा एक नया जन्म हो और मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करूँ। 99% हम खुद गलत होते हैं, तभी लड़ाई होती है घर में। ये तो शुक्र है वो सब्र कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे घर वाले, जिन्होंने अभी तक हमें फारिग नहीं कर दिया, हमारे कोई फोहड़पने को देखे, हमारी कोई सुस्तियों को देखे और हमारी कभी कोई फजूल खर्चियों को तो देखे। मेरे नबी ने कहा इट्स ओके, तुम्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने पे इशू है, मुझे कोई मसला, बिस्मिकल्लाहुम्मा। कभी ये हिकमतें तो सीखे। फिर अगला मसला हुआ कि जब आया कि ये मौदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, मीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला कुरैश, फिर लड़ पड़े, उनकी तो आदत थी लड़ने की। अगर हम आपको रसूल मानते तो हमारा झगड़ा ही खत्म होता, हम नहीं मानते आपको, बताओ क्या करें। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। अब आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हजरत अली को आपने कहा मेरा नाम किधर है, उसके आगे रसूलुल्लाह किधर है, कहा ये, कहा इसको मिटा दो। अली ने कहा मेरे में नहीं ये जुरत कि मैं आपके नाम के आगे से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ निकालू। आपने कहा अच्छा मुझे बताओ किधर है, सहाबा ने बताया कि यहाँ से आगे यहाँ रसूलुल्लाह, आपने अपने दस्ते मुबारक से उसको मिटा दिया। कभी आपने ऐसे मोहम्मद से मुलाकात की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्यों नहीं बताते खुतबों में और दरसों में, और ये किरदार क्यों नहीं आज आपने अपने हाथ से मिटा दिया। तुम्हें मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं लगता, लाओ मैं अपने लिए, मुझे कोई मेरी बेइज्जती नहीं, मैं टूटी जूती पहन के भी चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होता, ये अंदाज था। तो बहरहाल आगे चलते हैं, अल्लाह के नबी ने मसला नहीं बनाया और अपने नाम के आगे से रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटा दिया। अल्लाह ताला ने आपको इसी का शायद बदला दिया, और सहाबा के दिलों में तहम्मुल पैदा किया, इनको तकवा पे साबित कदम रखा। फिर इसमें ख्वाब का जिक्र आएगा आयत 27 में, लक़द सदक अल्लाह रसूलहुर रुया बिल हक। फिर गलबा दलील के एतबार से भी और अमल के एतबार से, यानी दीन इस्लाम गालिब होगा। वो अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, ये इस पारे का मेन थीम भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो दीन दिया जो पूरी दुनिया में गालिब होगा। और फिर इसमें वो जुमला भी आ रहा है जो आपके पारे के थीम में था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आयत 29 में ये जुमला मौजूद है। उन्होंने वहां से मिटवा दिया, कितनों ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ना था सुलह हदैबिया का, चंद अना परस्तों ने और जो नबी के खिलाफ थे, या कुछ सहाबा की नजर पड़ जाती वो डॉक्यूमेंट तो वैसे ही इधर उधर हो जाना था। अल्लाह ने क़यामत तक दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट कुरान में ये जुमला नकल कर दिया, तुम जो मर्जी कह लो लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मिलता है अल्लाह से जब आप थोड़े से तहम्मुल के साथ चीजों को लेते हैं। क़यामत तक के लिए इसको कलमे का हिस्सा बना दिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर थे, उनकी ज़ात, उनकी बात, उनकी एक एक चीज़ को महफूज कर लिया। और फिर सूरत के एंड पे सहाबा कराम की सिफात, वल्लज़ीना माहू, उसके बाद सूरह हुजरात आती है, उसमें भी असहाबे नबी और नबी सल्लम के ताल्लुकात, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखेंगे। और एक मौलिम होने के नाते आपका क्या मुकाम था, और सहाबा को आपके साथ किस टोन में बात करनी चाहिए थी, ये सारा सूरत हुजरात में मिलेगा। बाहर खड़े होकर आवाज़ देना या इस तरह से ऊंची ऊंची बोलना, इससे मना किया गया। शुरू में मस्जिद नबवी के आदाब है कि नबी के सामने जब तुम जाओ तो तुम क्या करो, किस टोन में बात करो, और आज आप नहीं है तो आपकी मस्जिद में जाने के भी यही आदाब है। फिर इसमें कुछ आदाब मुआशरत सिखाए जा रहे हैं आयत 11 से लेके ऑनवर्ड, और 13 आयत में बताया जा रहा है कि इज्जत का दारोमदार तकवा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यतकाकुम। फिर इसके बाद सूरह कौफ है, इसमें मोटा कौफ कुरान वाला हरूफ मुकत्तात है, इसमें आखिरत और ख़ास तौर पे फिर क़यामत को पेश किया गया है। बास बादल मौत, मुनकरीन अम्बिया का कुछ तस्करा, फिर किरामन कातबीन की बातें हैं 17 आयत पे, फिर जहन्नम से सवाल और उसका जवाब, फिर मुत्तकीन का इनाम आयत 31 में, और फिर फरीज़ा इमामुल अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। तो अल्लाह करे कि हम इस पूरे पारे का हक अदा कर सके। मुझे लगता है कि इतनी बातें सुनने के बाद तो काफ़ी हद तक आपका दिल दिमाग इस पारे के मेन थीम के साथ चलता है। आइए अब हम इसको शुरू करेंगे आयात के साथ। ये सूरत अल-अहक़ाफ़ शुरू होगी जिसमें 35 आयात है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम, तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। हमने आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान की तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ ही एक मुद्दते मुअय्यन के लिए पैदा किया, यानी ये दुनिया ऐसे नहीं बना दी गई, पहले से प्लानिंग की गई। और काफिर लोग जिस चीज़ से डराए जाते हैं मुंह मोड़ लेते हैं, यानी उनका हाल क्या है। قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض, आप कह दीजिए भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है या आसमानों में इनका कौन सा हिस्सा है। अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले ही की कोई किताब या कोई इल्म है जो नकल किया जाता है तो मेरे पास लाओ। इससे पता चलता है कि दीन इस्लाम दलील मांगता है, दलील के बगैर जो भी काम होगा वो गलत होगा। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, और इससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक इसकी दुआ कबूल न कर सके बल्कि इनके पुकारने से महज बेखबर हों। और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो ये इनके दुश्मन हो जाएंगे और इनकी परस्तिश से साफ इनकार कर जाएंगे। और इन्हें जब हमारी वाज़े आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुनकिर लोग सच्ची बात को जबकि इनके पास आ चुकी कह देते हैं कि ये सरीख जादू है। अम यकूलून अफ्तरा, क्या वो कहते हैं कि इसे तो इसने खुद घड़ लिया है। आप कह दीजिए कि अगर मैं ही इसे बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते। हुवा आलमु बिमा तुफीदून फी, तुम इस कुरान के बारे में जो कुछ कह सुन रहे हो इसे अल्लाह खूब जानता है। ये नोट कीजिएगा। फिक्र ना किया करें कुरान के बारे में। कोई गलत बात कह दे, सुन ले, तो अल्लाह ताला उस बात को नोट करता है और अल्लाह के जिम्मे है इस किताब की हिफाजत। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। कुल मा कुंतु बिदम मिनर रुसुल व मा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम। इसको हाईलाइट कीजिए। आज इंडो पाक में अल्लाह के नबी की जात के बारे में बहुत एग्जेजुरेशन है, जिसमें ये भी है कि जी अल्लाह के नबी को कल की बात पता थी, आप गैब जानते थे, ये है वो है, जबकि आपको क्या कहा जा रहा है। आप कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा पैगंबर तो नहीं, ना मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो सिर्फ इसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही भेजी जाती है, और मैं तो सिर्फ अलल ऐलान आगाह कर देने वाला हूँ। तो अकीदे की इसलाह कीजिए। अल्लाह के नबी को नहीं पता कल किसके साथ क्या होने वाला है। कुल अराई तो मिन कान मिन इन दिल्लाह। आप कह दीजिए अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसे ना माना हो। जरा सा गौर कीजिए, वो मानते ही नहीं थे कि अल्लाह का कलाम है, तो उनको झंझोड़ा जा रहा है कि अगर तुम जो मान रहे हो वो गलत साबित हुआ और वाकई अल्लाह की तरफ से हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। हजरत अली को एक मौके पर एक गैर मुस्लिम ने कहा था कि तुम मुसलमान क्या हो, अनदेखी आखिरत के लिए खाम खा ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, और ये पढ़ो, ये करो, ये करो। यानी उसने मजाक उड़ाया था कि क्या तुम एक शक की बुनियाद पे अपनी दुनिया की रंगीनी को कम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई बिलफर्ज तुम्हारी सोच ठीक हुई पर क्यामत ना आई तो मेरा क्या गया। मैंने कोई नेकी की तो मुझे सुकून मिला, किसी का भला हो गया, खैर मिल गई, इट्स फाइन, नहीं आती क्यामत तो ना आए। बट तुम सोचो, और एक लम्हे के लिए सोचो, एक 1% अगर मेरी बात ठीक हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। ऐसा मुअसर अंदाज था कि दिल हिल गया, मुसलमान हो गया वो शख्स। ऐसे बात किया करें, दुआ करें अल्लाह बात में तासीर डाल दे। हम कहते हैं 100 दफा कहे, 1000 दफा कहे, खप गई हूँ, कहती रहती हूँ सुबह शाम, एक दफा कहें बस अब। लेकिन बैठ के सुकून से तहम्मुल से, बेटा आपको मैं एक बात बताऊँ, ये खुदा हाफिज, चले जाइए। फिर उसको छोड़ दीजिए उसके शऊर पे। हम अपने बच्चों की मत मार लेते हैं उनके साथ मगजमारियां कर करके। मियाँ साहब नहीं मानते आपकी बात, नहीं समझ आती उनको। आप सुबह भी लड़ाई, घर में झगड़ा, मसला मसला, वो ऊंची बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, नहीं। एक दिन आराम से चाय का कप एक उनको दें, खुद दें, बैठ जाए, सुकून से बात कर लें। मेरे ख्याल में ये मुनासिब है। आप इस्तखारा कर लें और अल्लाह पर डाल दें और उठ जाए फिर वहां से। फिर उनको ताने ना दें आगे से कुछ। हमेशा याद रखिए, थोड़ी बात, पुरअसर बात, नरमी की बात, बर वक्त बात ज्यादा असर लाती है, ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाए। इसीलिए फरमाया, और बनी इसराइल का ये गवाह इस जैसी गवाही भी दे चुका हो और वो ईमान भी ला चुका हो और तुमने सरकशी की हो, तो बेशक अल्लाह ताला जालिमों को राह नहीं दिखाता। कुरान का अंदाज बड़ा मुदल्लल है। वकाल लजीना कफरू लिल्लजीना आमनू लौ काना खैरन। देखिए जरा मक्का वालों की हट धर्मी और कुफार ने ईमान वालों की निस्बत कहा कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग इसकी तरफ हमसे सबकत करने ना पाते। यानी हम सरदार है, फिर ये दीन पहले हमारे पास आता, इन तक कैसे पहुंच गया अच्छा दीन है तो। और चूंकि उन्होंने इस कुरान से हिदायत नहीं पाई, बस ये कह देंगे कि इफ्कुन कदीम, ये कदीमी झूठ है। जब नहीं मानना होता ना तो बंदा ऐसी बातें करता है। वमिन कबली ही किताब मूसा इमाम व रहमा, और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब पेशवा और रहमत थी, और ये किताब है तस्दीक करने वाली अरबी जुबान में, ताकि जालिमों को डराए और नेककारों को बशारत हो। इतनी खुशखबरियाँ, बुशरा लिल मुहसिनीन। कौन होते हैं मुहसिनीन? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर जमे रहे, तो इन पर कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। उलाइका असहाबुल जन्नति खालिदीन फीहा। ये तो अहले जन्नत है जो सदा इसी में रहेंगे, इन अमाल के बदले जो वो किया करते थे। पीछे सूरह हामिम सजदा में भी आयत आई, उधर आगे था तनज्जुल अलैहिमुल मलाइका की खुशखबरियां थी, यहाँ ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लिख लीजिए। आपको सुकून कब मिलेगा? आपका डिप्रेशन कब दूर होगा? आपकी एंजाइटी या अंग्स कब खत्म होगा? जब आप दीन को मजबूती से थाम लेंगे और फिर थामने के बाद कभी नहीं छोड़ेंगे। आमतौर पे लोग हमें मशवरे देते हैं या हमारे इर्द गिर्द वालों को मशवरे देते हैं, ये जब से कुरान पढ़ने लगी है ना, ये टू मच हो गई है, ये बहुत जज्बाती हो गई, ये बड़ी इमोशनल हो गई, इसको इससे दूर कर दो, फिर इधर उधर उसको बहकाएंगे, कभी चाहने का अंदर रूह मचलती है। इस कुरान को जज्ब कीजिए, इसको अपने ऊपर इस तरह लिया करें कि आपके दिल पे एक ठंडी सी ओस पड़ जाए। कोई काम कर लें और पूरा करें ना, फिर सुकून आता है। आधा खाना पका, आधा चूल्हा बंद कर दें, बेचैनी लगी रहनी है। आधी कमीज इस्त्री हुई, आधी नहीं हुई, बंद कर दें इस्त्री, आपको खुद बुद्ध लगी तो अधूरे कामों को पूरा करें, खुद ही सुकून आएगा। इस्तकामत क्या कि दीन को एंड तक लेके चलो। आधा पचद्दा दीन है हमारे पास, किसी के पास 20%, 40%, 50, 60, 100% उदखुलू फिस सिल्मी काफा। बस ये है इस्तकामत। और जो इस्तकामत के दर्जे पे होता है ना, इसीलिए वो मुतमईन, मुस्कुराता, स्माइल। अक्सर मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जो अपने फोकस के साथ अल्लाह के हुक्मों को मान रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं लोग क्या कहेंगे, इस वक्त का क्या तकाजा है, लोग क्या सोच रहे हैं। आप देखें उनके चेहरे पे एक चमक होती है, ठंडक होती है, सुकून होती है। अधूरे काम बंदे को बेचैन कर देते हैं, लिहाजा जो काम करें उसको आसन दर्जे पे करें, बेहतरीन कीजिए। और फिर फरमाइए तो अहले जन्नत हैं जो सदा उसमें रहेंगे, अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में शामिल कर दें। अब आगे वालदैन के साथ कुछ सलूक की बातें। वबस्सैना लिल्इंसान बि वालिदैहि एहसाना, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। इसकी माँ ने इसे तकलीफ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके इसे जना। इसके हमल का और इसके दूध छुड़ाने का जमाना 30 महीने है। क्या पता चला, हिसाब लगा लीजिए, 2 साल 24 महीने हो गए, प्लस 6 6 मंथ का बच्चा भी सर्वाइव कर जाता है, इससे कम नहीं। और इसमें बहुत सारे फिकी मसले हैं जो इस वक्त हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि जब वो अपनी पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुंचा तो कहने लगा, हाईलाइट कीजिए, बाज़ इन आयात को हज़रत अबू बकर की तरफ भी मंसूब करते हैं, अमूमी अंदाज़ है, रब्बी औज़ेनी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमता अलैय्य वअला वालिदैय्य वअन अअमल सालिहन तरदाह तरदाह हुवा अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक वइन्नी मिनल मुस्लिमीन। अब शौर से इस दुआ का तर्जमा सुने और आमीन कहें, क्योंकि ये वो खूबसूरत दुआ है जिसमें वाहिद दुआ है, माँ बाप के लिए भी है और औलाद के लिए, यानी तीन नस्लें हैं, आप खुद, ऊपर एक आपके फोर फादर और नीचे आपके ऑफ स्प्रिंग्स और किड्स और जुर्रियत। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे तू खुश हो जाए, और तू मेरी औलाद को भी सालेह बना। मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। 40 साल की उम्र बड़ी अहम उम्र होती है, ये 40 साल की उम्र के होने वाले लोगों की दुआ है। अगर आप 40s है ना, वैसे मुझे पता है आप तो 30+ ही होंगी ज्यादा ज्यादा, लेकिन बिल फर्ज मुहाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर आप में से किसी का दिल कबूल करता है कि वो 40 साल की हो गई है, तो ये दुआ मांगा करें। बंदा दो नस्लों को साथ लेके चल रहा था, घर में बुढ़ी बुढ़ा भी हैं जिनको कोई बात ही नहीं समझ आती, वो एन वक्त पे कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं, और साथ छोटे छोटे चिंगे पिंके भी हैं जो आते जाते में चीजें खराब कर रहे होते हैं। बीच में बंदा कहता है, रब मेरे साथ क्या बना, अम्मी अब्बा कहते एसी बंद कर दो, बच्चे कहते एसी लगा दो, अम्मी अब्बा कहते नहीं जाना कहीं इधर ही बैठे रहो, बच्चे कहते नहीं सैर करने जाना है, और वो बीच में बंदा फिर सैंडविच बनता है। जब आपसे अपने बूढ़े माँ बाप की कुछ चीज़ें बर्दाश्त ना हो रही हों, जब आप अपने बच्चों और बच्चों के कई तकाजे पूरे ना कर सकें, तो अल्लाह के आगे आजिज़ होकर ये दुआ कर दिया करें कि मेरे रब तू मेरी मदद कर। क्या मिलेगा? उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू, यही वो लोग हैं जिनके नेक आमाल तो हम कबूल कर लेते हैं और जिनके बद आमाल से दरगुजर कर लेते हैं। ये जन्नती लोगों में से हैं इस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता है। क्या खूबसूरत पैगाम है। आप देखिए, जब बंदा दुनिया की और रिश्तों की कशमकश से गुजरा होता है और बोझ बहुत है, प्रेशर बहुत है, कमाना भी है, खाना भी, आप खवातीन हैं तो अपने ऊपर लीजिए, बच्चों को भी देखें, घर के बुजुर्गों को, तो ये बातें ठीक नहीं होती। नमाज भी पढ़ते हैं तो ध्यान पड़ा होता है कि बच्चा ना गिर जाए। अम्मा को जरूरत ना पड़ जाए, भागा थोड़ी है ना, इबादत में मजा नहीं, रोजा भी रखा हुआ है लेकिन कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, दोहरे कुरान भी सुन रहे हैं तो बीच में भी कोई मसला है, अल्लाह कहता है डोंट वरी अहसनवा अमिलू। जो लोग पूरी कोशिश के बावजूद रस्सा कशी का शिकार हैं, अपनी जरूरियात भी पूरी कर रहे, दीन भी लेके चल रहे, कुछ इबादत भी करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह कहते हैं डोंट वरी, तुम्हारी नमाज को हम तुम्हारी जिंदगी की वो कोई खूबसूरत सी नमाज जो कभी तुमने खुशू खुदू से जवानी में पढ़ी थी, अकेले में पढ़ी थी, किसी ताक रात में पढ़ी थी, किसी दुख के वक्त पढ़ी थी, हम तुम्हारी सारी नमाजों को उठाकर अपग्रेड कर देंगे उस नमाज के लेवल पर। बच्चों को रुलाती भी माएं देखी हैं बेचारियां, मस्जिदों में आती हैं, बच्चे भी रो रहे, लोग भी घूर रहे, बच्चा रोता है लोग माँ को देखने लग जाते हैं कि ये क्या, वो भी मानने का बच्चे को कराओ, तो आप आते रहिए करते रहिए, क्या पता चला फतकुल्लाह मस्त था, तुम गिरते पड़ते रोते धोते आंखें मलते सोते जागते नींद में हैं, जब उठते हैं उठ के आ जाइए, अल्लाह को आपका उजर पता है, अगर सच्चा हुआ तो अल्लाह आपका दर्जा सबसे फर्स्ट वालों पे ले आएगा। और दूसरा फायदा वन तजावजुअन सैयातिहिम, अल्लाह बुरे अमाल से दरगुजर करता है। देखिए आजकल अल्लाह के नबी के लिए मोहब्बत आ रही है ना दिल में, आप जब अल्लाह की जात के सिफात को पढ़ें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खूबियां किसने दी, इतनी नरमी किसने दी, इतना तहमुल किसने दिया, तो वो हस्ती खुद कैसी होगी। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, ना अल्लाह की कदर की ना रसूल की कदर की, और आज उम्मत ठोकरों में पड़ी हुई है, हमें खुद नहीं पता हमारे बड़े कौन थे, हम किन की नस्ल से और क्या वो काम कर गए, तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लोगों में शामिल फरमा ले।